श्रोताओ नमस्कार। हमेशा की तरह आपका मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पहला थिस्सलुनीकियों नामक पत्रिका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ हम विश्वास करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस बाइबल अध्ययन को सुने और जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पुस्तकों में से पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि इस पत्री का लेखक पौलुस है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सच्चे वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों से बोले और बातचीत करें। आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दे ताकि आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं या किसी प्रकार के तनाव में हैं, पारिवारिक उलझन में हैं। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके साथ हो, उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, आज के वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम इन दिनों थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पौलुस थिस्सलुनीके के मसीही जनों की सराहना में कह रहा था कि उनमें तीन मसीही गुण थे, विश्वास, प्रेम और आशा, और यही एक विश्वासी की जीवनी है। अब पौलुस एक और महान सत्य की चर्चा करता है। आइए हम पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री एक अध्याय उसके चार पद में लिखा है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। देखिए, यहां फिर से पौलुस चुने जाने की बात करता है। मैं इफिसियों के अध्ययन में इस पर विचार कर चुका हूं। इफिसियों की पत्री एक अध्याय उसके चार पद में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इसके बाद मुझे पत्र प्राप्त हुआ जिनमें कुछ तो कहते थे कि मैंने चुने जाने पर अधिक बल नहीं दिया। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना था कि मैंने चुनाव के विषय आवश्यकता से अधिक बल दिया है। दोनों प्रतिक्रियाओं को पढ़कर मैंने निष्कर्ष निकाला कि मैंने जो चर्चा की वह उचित ही थी, क्योंकि किसी विषय की चर्चा करते समय हम दो विपरीत सीमाओं को पार नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से चुने जाने के विषय में चर्चा करते समय पौलुस संकोच नहीं करता है। वह परमेश्वर की ओर से कहता है, आप और मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण को देख नहीं पाते हैं और न ही हमने उसे कभी देखा है, परंतु सत्य के संबंध में कुछ महान सत्यों को जो स्वयं ही सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दो बिंदुओं के मध्य की कम से कम दूरी सीधी रेखा है। मेरे कहने का अर्थ है कि कुछ बातों को हम सिद्ध नहीं करते, परंतु ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार पौलुस भी चुने जाने को सिद्ध नहीं करता है, वह केवल एक तथ्य स्वरूप उसे कह देता है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। यह सिक्के का ईश्वरीय पक्ष है। सृजनहार का अपना परम अधिकार है। प्यूरिटियन नामक एक मसीही संस्था के जीवन का आधार था परमेश्वर का परमाधिकार। सृजनहार का अपना परमाधिकार है। हमें स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर ने जगत की रचना की है। बस मुझे इसकी चिंता नहीं कि उसने कैसे की या उत्पत्ति में जो लिखा है उसकी चिंता करूं। मैं बस एक ही बात पर ध्यान देता हूं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। कुछ लोग यह तो मानते हैं कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, परंतु वे उसे जगत के नियंत्रण का अधिकार नहीं देते हैं। वे पृथ्वी को परमेश्वर के उद्देश्य के अधीन नहीं मानते हैं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि हम परमेश्वर द्वारा सृजित जगत में वास करते हैं और उसके महिमान्वयन हेतु जीवित हैं? पर्वतीय उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 में प्रभु यीशु ने कहा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। उसने यह नहीं कहा कि तुम्हारे भले काम तुम्हारा नाम रोशन करे। जी नहीं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का महिमान्वयन होना है। मेरे मित्रों, क्या मैं विशेष करके यह कह सकता हूं कि परमेश्वर ही सृजनहार है और यह जगत उसके महिमान्वयन के लिए ही बनी है? उसे छोड़ दूसरा परमेश्वर नहीं है। वह किसी से राय एवं सुझाव नहीं मांगता है। वह अपने उद्देश्य के निमित्त इस जगत का संचालन करता है। वह अपनी महिमा के निमित्त इसका नियंत्रण करता है। हम परमेश्वर पर केंद्रित जगत में वास करते हैं। यह जगत मानव केंद्रित नहीं है, यह स्वर्ग केंद्रित है। यह परमेश्वर का जगत है और वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। मेरे मित्रों, एक और आवश्यक बात है, परमेश्वर निरंकुश शासक नहीं है। परमेश्वर न्याय में उचित है। परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर महापवित्र है। परमेश्वर का हर एक काम उचित होता है। शायद आपके विचार भिन्न हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप सोचते हैं परमेश्वर का काम सही नहीं है या उसकी योजना सर्वोत्तम नहीं है, तो आप गलत हैं। परमेश्वर नहीं, आपको अपने विचारों में संशोधन करना आवश्यक है, अन्यथा आप जगत के प्रतिकूल होंगे। यह जगत परमेश्वर के लिए, उसके महिमान्वयन के लिए और उसके उद्देश्य के लिए ही अस्तित्व में है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे उसकी महिमा प्रकट ना हो। वही प्रभारी है और आज वही इस जगत का संचालन भी कर रहा है। मेरे मित्रों, इस बात में मस्तिष्क में रखकर हम एक और बात पर ध्यान देंगे। क्या आपने कभी अपने जन्म पर विचार किया है? आप अस्तित्वहीन भी हो सकते थे। मैं भी नहीं होता। परमेश्वर ने आकर मुझसे नहीं पूछा, क्या तू पैदा होना चाहता है? यदि वह पूछना भी चाहता तो क्या मैं था? मेरा उत्पन्न होना उसी की इच्छा थी। वह मेरे जन्म लेने के लिए उत्तरदायी है। उसने मुझसे यह नहीं पूछा कि क्या मैं पुरुष होना चाहता हूं या स्त्री, क्या मैं अमीर के घर में पैदा होना चाहता हूं या गरीब के घर में। उसने यह भी नहीं पूछा कि क्या मैं इसी युग में जन्म लेना चाहता हूं। उसने मुझसे मेरे माता पिता को चुनने के बारे में भी नहीं पूछा। उसने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मेरे माता पिता ईश्वर भक्त हो या धनवान हो। वे ना तो ईश्वर भक्त थे और ना ही धनवान। परमेश्वर इस जगत का संचालन करता है क्योंकि यह जगत उसका है। आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, परंतु ऐसा ही है। परमेश्वर निरंकुश शासक नहीं है। किसी को भी उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चुना है और ना ही उसने किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध त्यागा है। परमेश्वर अपने हर एक काम में सही है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस पूछता है, इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। परमेश्वर हर एक काम में न्याय संगत है। हमें उस स्थान पर आना होगा जहां हमें यह बोध हो कि हम केवल सृजित प्राणी मात्र हैं, वरन भ्रष्ट प्राणी हैं। मैं जानता हूं कि आज के युग में ऐसा कहना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हम तो एक दूसरे को सराहते हुए कहना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। यही कारण है कि मनोरंजनालयों में किसी न किसी की प्रशंसा की जाती है। मानव जाति यह सब इसलिए करता है कि हमें सिर पर चढ़ाए और हमें सोचने पर विवश करे कि हम महान हैं। सच तो यह है कि हम परमेश्वर से विद्रोह किए हुए हैं। मेरे मित्रों, आज हमें मानव अधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे पापी को हमारे लिए निर्णय लेने का अधिकार है। प्रजातंत्र तभी सफल होगा जब मनुष्य परमेश्वर की प्रधानता को स्वीकार करेगा। उसे यह बोध होगा कि वह उसका एक सृजित प्राणी मात्र है और उसे दंडवत करेगा। मैं थिस्सलुनीकी के विश्वासियों को लिखी पौलुस की यह बात दोहराता हूं, 1 अध्याय के 4 पद को। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। मेरे प्रियो, आपको शायद यह पद स्वीकार्य ना हो, परंतु ऐसा ही है, क्योंकि परमेश्वर इस जगत का संचालन करता है। परमेश्वर के विरुद्ध मोर्चा निकालने की अपेक्षा मेरा सुझाव यह है कि आप परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद दें कि वह आपको इस जगत में लाया और आपको एक स्वतंत्र नैतिक प्राणी होने का अवसर दिया कि आप उसके लिए अपना निर्णय लें। उसका निमंत्रण आज भी वैसा ही है जिसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद में पाया है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। क्या आप प्यासे हैं? मसीह यीशु के पास आ जाएं। वह आपको ग्रहण करने के लिए तैयार खड़ा है। यदि आप कहें कि आप प्यासे नहीं हैं, तो छोड़ो और भूल जाओ। परमेश्वर आज इस पथ भ्रष्ट संसार को निर्मोल परिपूर्ण उद्धार दिलाना चाहता है। वह मनुष्यों से कहता है, लो या रहने दो। यह हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि उसे ग्रहण करें या उसे त्याग दें। मध्य मार्ग नहीं है, अर्थात बीच का कोई रास्ता नहीं है। हर एक मनुष्य को किसी एक बात को चुनना है और चुनने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। सुसमाचार बड़े निश्चय और बड़े कष्टों के साथ पहुंचाया गया है और हम तक भी इसी प्रकार से पहुंचता है। मित्रों, अब हम आगे एक और महान पद को पाते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। पौलुस कहता है कि तुम जानते हो कि जब हम तुम्हारे पास आए थे तब हम केवल मनुष्य थे, दुर्बल प्राणी थे, जिनके पास मिट्टी के होंठ और जीभ भी थे। हम केवल शब्दों का उच्चारण कर सकते थे और हम परमेश्वर का वचन आपको सुनाने आए थे, परंतु परमेश्वर का वचन सामर्थ और पवित्र आत्मा में तुम तक पहुंचा। मेरे मित्रों, यह सत्य मेरी सेवा को संसार की सबसे उत्तम सेवा बनाता है। मुझे यह मन भावन लगती है। मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना भाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैं परमेश्वर का वचन सुनाता हूं तो वे मनुष्य के शब्दों में होता है, परंतु पवित्र आत्मा उन्हें प्रभावी बनाता है। मेरे पास इसकी साक्षी में 500 पत्र हैं। एक स्त्री लिखती है कि जब उसने पहली बार हमारे रेडियो कार्यक्रम को चलाया तो उसके पति ने 30 मिनट प्रचारक को कोसा, परंतु वह रेडियो कार्यक्रम सुनती रही। एक दिन वह रेडियो कार्यक्रम लगाना भूल गई, तब उसके पति ने उसे स्मरण करवाया और रेडियो कार्यक्रम सुना, और अंत में वह दिन भी आया जब उसने रेडियो के आगे घुटने टेक कर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मेरे मित्रों, यदि आप सोचें कि यह मेरी प्रवीणता के कारण था तो आप भ्रम में हैं। सच तो यह है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को प्रभावी बनाता है, यह हमारा विश्वास है। अब सावधानी से सुने, मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल परमेश्वर का अचूक वचन है। कृपया मुझे लिखकर लेखों की प्रस्तावनाएं और समस्याएं समझाने का प्रयास नहीं करना। मैंने सेमिनरी अर्थात बाइबल कॉलेज पढ़ी है और आरंभिक पाठ्यक्रम भी पढ़ाए हैं, अतः मुझे इतना थोड़ा सो ज्ञान है। मैं परमेश्वर के वचन को अचूक मानता हूं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। मैं इससे भी कुछ आगे बढ़कर के कहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा वचन को आपके मन में प्रवेश करवाता है, आपके जीवन में अर्थपूर्ण बनाता है, जिसके द्वारा हम बदल जाते हैं। मनुष्य का नया जन्म दुर्बल शरीर में नहीं होता है, रेडियो पर कुछ शब्द कहने या छपे हुए कागज से नहीं होता है। पहला पत्रस के पत्री 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा वचन को आपके लिए वास्तविक बना देता है। मेरे विचार में परमेश्वर का आत्मा टेलीफोन नंबरों की निर्देशिका या प्रसिद्ध पत्रिकाओं द्वारा अधिक कुछ कर पाएगा, परंतु मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को लेकर सबसे महान चमत्कार कर सकता है, जैसे अविश्वासी पथभ्रष्ट पापी को परमेश्वर की संतान बना सकता है। आप चाहे कितने बड़े पापी क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपको बदल सकता है, आपको क्षमा और उद्धार दिला सकता है। परमेश्वर का वचन रोमी उपनगर थिस्सलुनीके में पहुंचा, जो एक अन्य जातियों का नगर था तथा संसार के एक महानतम साम्राज्य के अधीन था, और वहां के निवासियों के जीवन और हृदयों में प्रवेश करके उन्हें बदल दिया। थिस्सलुनीके नगर में ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा हो सकता है। मेरे मित्रों, मैं 5 को दोहराना चाहता हूं क्योंकि वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। किसी के लिए भी आवश्यक है कि वह परमेश्वर के वचन को सुने। यह सच है, मनुष्यों को सुसमाचार सुनना है। रोमियों की पत्री 10:17 में पौलुस कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, यह प्रक्रिया की स्वाभाविकता है, परंतु अंत यही नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि अंत यही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक अलौकिक पुस्तक है। पवित्र आत्मा के बिना सुसमाचार मात्र शब्दों का संग्रह है, परंतु पवित्र आत्मा के साथ सुसमाचार उद्धार के निमित्त हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:7-11 में कि पवित्र आत्मा ठीक यही करता है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर यह स्पष्ट है कि परमेश्वर का वचन अर्थात सुसमाचार हमारे जीवन में आता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उस वचन को क्रिया रूप देता है, उस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। आज हम अपने जीवन में क्या परमेश्वर के वचन को सुन पाते हैं? क्या परमेश्वर का वचन मेरे जीवन से बातचीत करता है? मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैंने भी इसे सीखा है। एक बार मैं भी प्रश्न कर रहा था कि परमेश्वर मुझसे बातें क्यों नहीं करता है। मैं एक घर में गया और वहां पर मैंने एक सुंदर घड़ी देखी। तब मैंने उसे उठाकर अपने जेब में रख लिया क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। परंतु अचानक से मुझे याद आया कि चोरी नहीं करना है, अर्थात मैं उस घड़ी को दोबारा उसी स्थान पर रखकर बाहर आया। तब मुझे समझ में आया कि मुझसे किसने बात किया, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था, परंतु परमेश्वर का वचन जिसे मैंने पढ़ा था कि चोरी नहीं करना है, और उसी ने मुझसे बात किया और मैं उससे बच गया। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है और वह मुझसे और आपसे आज भी बातचीत करता है। वह चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसकी गंभीरता को समझें और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आप निश्चय ही परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद। मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद।
यीशु मसीह की महिमा देखो।
उसके कदमों